कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवान नंद बाबा से बोलते हैं कि अभी बहुत अच्छा मौसम है, इनका सबका विवाह होना चाहिए। नंद बाबा सभी योग्य गोपाओं को, गोपियों को उनके ग्वाल बालों के साथ शादी कर देते हैं। और इस एक साल के अंदर वो जो व्रत गोपियों ने किया था उसके परिणाम स्वरूप सभी गोपियों को भगवान अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उनके साथ में एक साल तक उनको अपना संग देते हैं। और एक साल के बाद में, मतलब ब्रह्मा जी के एक क्षण के बाद में, ब्रह्मा जी लौट के आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। वो क्या देख रहे हैं, वही सीन वहां पर है, उसी तरह सब लोग झूठ खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, हंस रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। उनको भ्रम होता है ये क्या आनंद है। जाके देखते हैं तो गुफा में भी वही बालक है, निद्रा में है बच्चों के साथ में। फिर लौट के आके देखते हैं तो फिर वही पर खेल रहे हैं, ये क्या चमत्कार है। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे विश्व का सबसे श्रेष्ठ बुद्धि है ये ब्रह्मा जी, ये सपोज टू बी इंटेलिजेंस पर्सोनिफाइड, साक्षात बुद्धि है वो पूरी। कैसी बुद्धि है, पूरे ब्रह्मांड को निर्माण करने वाली बुद्धि है, सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है वो। सर्वश्रेष्ठ बुद्धि जो है भगवान के इस लीला के सामने पूर्णता से मोहित हो जाती है। द इंटेलिजेंस ऑफ ब्रह्मा जी गेट्स टोटली बिविल्डर्ड, और उनके ब्रह्म में अधिक भर डालने के लिए उनकी आंखों के सामने भगवान हर ग्वाल बाल को विष्णु के रूप में प्रकट कर देते हैं। हर ग्वाल बाल जो है, हर बछड़ा और हर ग्वाल बाल, और स्वयं कृष्ण भी है उनके बीच में बैठे हुए हैं, सब लोग चतुर्भुज विष्णु बन जाते हैं। और उनके हर एक विष्णु के साथ में 33 करोड़ देवताओं का एक सेट जो है उनका गुणगान कर रहा है, नृत्य कर रहा है। ब्रह्मा जी भी है उसमें, शिव जी भी है, हाँ सब इंद्र है, वायु, वरुण, सोम, सब देवता उसमें अंदर गायन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, श्लोक गा रहे हैं हर एक विष्णु के सामने। तो पूर्णतः इनका जो है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और फिर एक क्षण में ये सब सीन खत्म हो जाता है और पुनः भगवान ऐसे अनजान बालक बन के हाथ में चावल और दही लेके कूद रहे, मेरे साथी कहाँ गए। सब कुछ सीन गायब हो जाता है और अकेले भगवान खड़े हैं छोटे से बालक के रूप में। तब वो समझ जाते हैं कि ये मैं ही मेरे आराध्य भगवान है। मेरे मन में भ्रम था, संभ्रम था कि ये कौन है, कि यही है वो जिन्होंने आगासुर का वध किया था। तो सब बालकों की झुलन खा रहे हैं। तो ब्रह्मा को बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने घोर अपराध किया है, इनकी दिला में मैंने बाधा डाली है, इनकी दिलाओं को भंग किया है, इनके प्रेमी ग्वाल बालों का संग मैंने तोड़ दिया है। आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई इंटेलिजेंस, मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इनको सम्मोहित किया और भगवान से अलग कर दिया। इंद्र ने भी अपराध किया था भगवान का, लेकिन उस अपराध की वजह से क्या हुआ था, सभी ब्रजवासी एकत्र हो गए थे, है ना। उसके परिणाम स्वरूप आमतौर पर क्या होता है कि जब भगवान लीला करते हैं तो एक साथ में एक लीला करते हैं, कभी ग्वाल बाल के साथ में, फिर गोपियों के साथ में, फिर माता पिता के साथ में, फिर मोर के साथ में, मतलब शांत रस, दास्य रस, वत्सल्य रस, मधुर रस के अलग अलग लीलाएं होती हैं। लेकिन इंद्र के अपराध की वजह से क्या हुआ, सारे पांचों रसों के जो भक्त थे वो एक छत के नीचे आ गए और एक साथ भगवान ने उनके साथ में 7 दिन 7 रात अलग अलग लीलाएं की, एक साथ में वत्सल्य माधुर्य साख्य एक साथ में टुगेदर। इसलिए ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया उससे भगवान ज्यादा क्रोधित हुए, इंद्र पर भी क्रोधित हुए थे। इंद्र जी ने उनको साथ में लाया सब भक्तों को, इतना क्रोध नहीं किया उन्होंने, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको अलग कर दिया सबको। ब्रह्मा जी को ध्यान में आया कि मैंने बड़ा अपराध किया है, तो माफी मांगी उन्होंने भगवान की। भगवान ने उनको इस रज का आश्रय लेने के लिए बताया। ब्रह्मा जी ने दंडवत प्रणाम किया, अपने चारों शिष्यों को भगवान के चरणों में झुकाया है उन्होंने और उनकी 8 आंखों से अश्रु बहे हैं, उन्होंने भगवान के चरण धोए हैं पश्चाताप में और स्तुतियां अर्पण किया उनको। और इसके बारे में भगवान बृहद भागवतामृत में कहते हैं कि ये बड़े बड़े देवता लोग जो हैं, एक तो अपने बड़े बड़े पद के अधिकार से मद में रहते हैं, दे आर इंटॉक्सिकेटेड विद देयर पावर एंड द इन्फ्लुएंस दैट दे हैव, और उसके बाद में गलती भी कर बैठते हैं बिकॉज ऑफ इंटॉक्सिकेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ द पावर दैट दे हैव commit mistakes and they disturb me in my pastimes. मेरी लव में बाधा डालते हैं और फिर आके माफी मांगते हैं और माफी के बाद में प्रार्थना करते हैं और सब कुछ मुझे सुनना पड़ता है, लेकिन मेरा मन जो है लाल बालों के जलाव में इतना मग्न है कि मैं वेट करते रहता हूँ कभी इनकी प्रार्थना खत्म हो जाए और कब मैं अपने लाल बालों के साथ खेलने वापस चला जाऊं। दिस इज लॉर्ड्स माइंड। भगवान को किसी के ऐश्वर्य से कोई परवाह नहीं है, कोई कितना पावरफुल है, कितना अधिकारी पुरुष है, क्या है, उसे प्रभावित नहीं होते। वो जो गवार दिखने वाले ग्वाल बाल हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई बड़ा पोजीशन नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, उनके खेल में वो ज्यादा रुचि लेते हैं, न कि ब्रह्मा इंद्र आदि बड़े बड़े देवताओं के साथ में चर्चा करने में रुचि लेते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, पश्चाताप में भरी हुई प्रार्थना कर रहे हैं, सिंसियरली कर रहे हैं, इसलिए वो खड़े हैं, लेकिन उनका मन जो है वो खेल में जाने के लिए कब समय मिलेगा इसमें लगा हुआ है। बताते हैं भरत भागवत अमृत में, इतना प्रेम करते हैं वो गाल बाल के ऊपर, उतना देवताओं पर नहीं करते हैं। जब इंद्र ने उनका अभिषेक किया था, अपने अपने देवताओं के लोकों से सबसे बेस्ट वस्तुएं लेकर आए थे, वो वायु देव छतरी लेकर आए थे, वरुण देव सिंहासन लेकर आए थे, मतलब अपने अपने लोगों का जो बेस्ट वस्तु है वो उन्होंने पृथ्वी पर लाया। उस समय इंद्र ने आदेश दिया था, जाओ वट एवर यू हैव बेस्ट ब्रिंग इट। ऐसे ऐश्वर्य से भरा हुआ भगवान का अभिषेक किया उन्होंने, आकाश गंगा से अपने ऐरावत के 5 सुंडे में भरकर पानी लाया था उन्होंने और भगवान का अभिषेक किया था। सुनी भी गाय ने मिलकर अपने दूध से उनका अभिषेक किया था, उससे मिलकर गोविंद कुंड बना था, बड़े सुंदर रत्नों से भरे हुए सिंहासन पे वायुदेव के द्वारा छतरी आई थी, ऐसे ऐश्वर्य संपन्न उन्होंने अभिषेक किया। वो सब छुप छुप के ग्वाल बाल देख रहे थे और घर में जाके बताया अपने अपने पिताजियों को कि हमने देखा था एक व्यक्ति था, उसके अंदर शरीर के अंदर पूरी आंखें ही आंखें थी, वो इंद्र था। इंद्र को शाप था ना, उसने अहिल्या का अपराध किया था तो गौतम ऋषि ने उनको शाप दिया था कि तुम्हारे सब शरीर के अंदर आंखें ही आंखें होंगी, हमारे अंदर 2 है ना, उनके अंदर पूरे शरीर के अंदर सब आंखें ही आंखें। तो बता रहे थे कि अरे कोई छत्र लेके आया था, कोई सिंहासन लेके आया था, इतने बड़े बड़े चांदी और सोने रत्न से भरे हुए चामर और ये, इतना भव्य अभिषेक हुआ, कोई बड़ा हाथी था, उसके 5 सुंड थी, उसके अंदर से जल रहा था, वो भगवान पर अभिषेक कर रहा था, कोई बड़ी बड़ी गाय थी सुंदर सुंदर, उनके थनों से बहुत दूध बह रहा था नदियों की तरह, हमारे कन्हैया पर ठाट से बैठे थे उस आसन में, बिल्कुल संकोच नहीं, डर नहीं, कुछ नहीं। हाँ, उनके दोस्त है ना वो, उनके मालूम नहीं कि परम भगवान है ये, तो हमारे में से हमारा मित्र जो है बड़े ठाट से बैठकर सिंहासन में सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं। तो फिर पिताजियों को किसी को विश्वास नहीं हो, क्या बोल रहे हैं बालक लोग, कुछ भी बकते रहते हैं इधर उधर, लेकिन बालक लोगों ने देखा था, सब बालकों ने, सब देवता लोग चले गए, छतरी भी छोड़ के गए, सिंहासन भी छोड़ के गए, सब छोड़ के चले गए। तब बाल बालों ने तय किया कि हम भी अभिषेक करेंगे कन्हैया जी का। उन्होंने गिरिराज के 2 शिलाओं को रचा ऐसे और बैठने का आसन बनाया, और कुछ साधन नहीं उनके पास, कोई ऐश्वर्य नहीं, कोई हीरा मोती नहीं, कुछ नहीं, बड़े प्रेम से भगवान का अभिषेक किया उन्होंने। भगवान ने दोबारा कहा है कि उस अभिषेक में मुझे करोड़ों गुना अधिक आनंद प्राप्त हुआ जितना मुझे इंद्र द्वारा अभिषेक करने में हुआ था, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं, वो तुम्हारे ऐश्वर्य के हीरे मोतियों के भूखे नहीं है। इतना बड़ा भव्य अभिषेक होने के बाद में वो क्या कहते हैं कि जो ग्वाल बालों ने बड़े प्रेम से सादगी में अभिषेक किया था उससे मुझे करोड़ों गुना अधिक आनंद प्राप्त हुआ, उसकी मैं तुलना नहीं कर सकता हूं इसके और उसकी। तो ये भगवान का ब्रजवासियों के प्रति प्रेम है। तो ब्रह्मा जी, तो भगवान ने माफ कर दिया, फिर दोबारा भगवान खेलने चले गए। तो ब्रह्मा जी अपने हंस पर बैठकर ब्रह्मा लोग जाने लगे, लेकिन वो इतने पश्चाताप कर रहे थे कि मैंने अपराध माफी मांगी, स्तुति की भगवान की, प्रार्थना की, सब कुछ किया, लेकिन उनका हृदय में शांति नहीं हो रही थी कि मैंने ऐसा कैसा किया, मैं तो ब्रह्मा जी हूं, भगवान का प्रथम पुत्र हूं, मुझे भगवान ने अधिकार ज्ञान सब कुछ दिया है, लेकिन मेरी ऐसी हरकत कि मैंने भगवान की लीलाओं में आनंद में बाधा डाली, कैसा तुच्छ जीवन है मेरा, क्या लाभ है इस ब्रह्म पद का। अगर ब्रह्म पद होके मुझे ज्ञान नहीं है, मैं समझ नहीं सकता हूं, तो ब्रह्म पद की वैल्यू क्या है, पूरी विरक्ति आती है उनके मन में, बोले लानत है मेरे इस पद पर, मेरे अधिकार पर, मेरे ज्ञान पर, मेरी ऐश्वर्य पर, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पद, जो पद मुझे भगवान की सेवा में सहायता करने में सहायता नहीं करता है, सहयोग देने में सहायता नहीं करता है, ऐसा पद लेके क्या लाभ है मुझे। उससे मुझे उल्टा मुझे ऐसा प्राप्त हो कि मैं उनकी तुच्छ व्यक्ति बनकर सेवा करूं, उनके सखाओं को सखियों को मिलने में मदद करूं, तो उनको रहा नहीं जाता है, वो उड़ रहे आकाश के अंदर दोबारा पृथ्वी पर उतरते हैं और एक जगह बैठकर तपस्या करते हैं पश्चाताप में कि भगवान मुझे इस ब्रह्म पद से मुक्त करो, मुझे अधिकार ऐश्वर्य शक्तियां जो आपने दी है सबसे मुझे मुक्त कर दो, सरोवरों की तपस्या करते हैं और वहां पर उनको श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन देते हैं, क्योंकि जहां पर वो उतरते हैं वो नवद्वीप मायापुर धाम है, अभी द्वापर युग चल रहा है, कलयुग में वो उनका जन्म स्थान होने वाला है, उस जगह पर बैठकर वो तपस्या करते हैं। तो वहां पर कृष्ण भगवान में के रूप में दर्शन देने के बजाय चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान को दर्शन देते हैं और उनके हृदय के सच्चे भाव से प्रभावित होते हैं, कहते हैं कि अगली बार तुम यवन के कुल में जन्म लोगे, तुम्हारा नाम हरिदास होगा, तुम्हें नाम में बड़ी रुचि होगी और कलयुग में तुम नामाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हो जाओगे। तब ब्रह्मा जी का हृदय शांत हो जाता है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि मुझे आपके ग्वाल बालों का दास बनाओ कि मैं उनकी जुटन खा सकूं, उनके चरणों के रज में लोटपोट हो सकूं, मुझे ऐसा कोई जीवन प्राप्त करा दो जिससे मैं इनके चरणों के नीचे उनकी रज प्राप्त करते रहूं, उनकी जुटन खाते रहूं। तो फिर भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, दर्शन देते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। फिर बड़ी खुशी से ब्रह्मा जी चले जाते हैं अपने धाम में, कलयुग का इंतजार करते हैं और कलयुग में फिर यवन के कुल में हरिदास के रूप में जन्म लेते हैं और आप जानते हैं लीला आगे क्या होती है। तो इस प्रकार से ये जगह वो है जहां पर राधा रानी ने हाथ धोया था, इसलिए हमने आकर यहां पर पहले गौरांग के ढेर लगाई, क्योंकि कृष्ण भगवान जब ये होता है लीला यहां पर और ये कुंड का पानी जो है वो पीला हो जाता है। ये कहानी मुझे इजोलिनेस बरसाना महाराज ने बताई थी कि सबसे पहले द्वापर में कब कृष्ण भगवान ने अपने चैतन्य महाप्रभु बनने का जो है संदेश दिया था, द फर्स्ट इंडिकेशन दैट ही इज गोइंग टू बिकम चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु इन कलयुग। तो जब ये लीला हुई और आदान प्रदान हो रहा है हीरे माणिकों का मोतियों का, उस समय एक बार घूमते घूमते कृष्ण भगवान यहां आ जाते हैं, उनको पता नहीं यहां पर क्या हुआ है, वो आते हैं अकेले आते हैं और देखते हैं अरे ये सब जल पीला कैसे हो गया, व्हाट इज दिस येलो सब्सटेंस, ये पीला वस्तु क्या है, ये पीला वस्तु क्या है, ये कैसे जल पीला हो गया, ऐसे कहते कहते वो जल में प्रवेश करते हैं और जल में प्रवेश करते हैं उतरते हैं उतरते हैं उतरते हैं, मतलब पहले यहां तक पानी फिर यहां तक पानी फिर यहां तक पानी फिर यहां तक सीने तक फिर गले तक फिर आंखों तक गालों तक, फिर उनका सर भी डूब जाता है, फिर भी एक ही आवाज गूंज रही है ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है, और आखिर में केवल दो हाथ दिखाई पड़ रहे हैं पानी के ऊपर, सब जगह पानी में वो हाथ डोल रहे हैं सब जगह पे और एक ही आवाज गूंज रही है पूरे आसमंत में, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है। और कुछ देर बाद सब ग्वाल बाल जमा हो जाते हैं, सब सखियां जमा हो जाती हैं, वो पूछते हैं क्या है ये, क्या अद्भुत लीला हो रही है। कुछ देर बाद कृष्ण भगवान वही प्रश्न पूछते पूछते बाहर आते हैं, तो उनका पूरा शरीर जो है वो गौर वर्ण हो जाता है, सुनहरे रंग का हो जाता है और फिर भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं व्हाट इज दिस येलो सब्सटेंस, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है, आप लोग उत्तर देंगे उसका, ये पीली वस्तु क्या है। हाँ यू आर राइट, इसका उत्तर है इस पीले रंग का रहस्य क्या है कि राधा रानी का भगवान के प्रति प्रेम है जो कृष्ण को पता नहीं है। कृष्ण सब कुछ जानते हैं लेकिन एक चीज सब कुछ जानते हुए भी ज्ञान का सागर होते हुए भी एक वस्तु वो जानते नहीं है कि राधा को कैसा आनंद होता है जब वो उनकी सेवा करती है। व्हाट इज दैट प्लेजर विच राधा रानी गेट्स व्हेन शी सर्व्स श्री कृष्णा सर्व्स मी ही इज थिंकिंग, वो उनको पता नहीं है, इसलिए वो देख रहे हैं कि ये रंग पीला है लेकिन पूछ रहे हैं ये क्या वस्तु है, ये क्या वस्तु है, ये क्या वस्तु है, इसका रहस्य क्या है। तो वो राधा रानी का कृष्ण के प्रति प्रेम है जिसको वो जब अनुभव करते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं, जल के अंदर चले जाते हैं, वो पूरा गौर वर्ण बनकर बाहर आते हैं और उस गौर वर्ण के रूप में वो प्रथम बार डिक्लेयर करते हैं कि मैं इसी रूप में आने वाला हूं आगे जाकर, दिस इज द फर्स्ट प्लेस where Lord Krishna has declared that he will become Gauranga Mahaprabhu and will experience the ecstasy of love of Radharani for him, and also understand what is that greatest thing in him which attracts Radharani. वो क्या हमारे अंदर वस्तु है, उनको प्रश्न है कि मेरे अंदर से क्या वस्तु है जो राधारानी को हमेशा आकर्षित करती रहती है। दोनों का अनुभव करने के लिए सबसे पहली बार चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ पर उन्होंने दर्शन दिया सब गोपियों को, और फिर धीरे धीरे सादे रंग के हो गए और अपने गांव चले गए। कैसी है अद्भुत जगह है, हाँ कोई साधारण जगह नहीं है ये, इतना लंबा कथा करने की जरूरत क्या है यहाँ पर, आपको केवल बताने के लिए कि कितनी अद्भुत जगह है ये। ये जगह राधा रानी का जो दिव्य प्रेम है उसका प्रतीक है, इट्स अ सिंबल ऑफ द डिवाइन लव ऑफ राधा रानी फॉर कृष्ण। पूरे विश्व में इससे उच्च प्रेम नहीं हो सकता है, इतना दिव्य प्रेम यहाँ पर एक मतलब प्रतीक के रूप में प्रकट हो गया है। तो आइए हम सब लोग मिलकर अभी जल में जाएंगे, प्रणाम करेंगे बड़े गंभीर हृदय से, बड़े आदर के साथ में, भक्ति और प्रेम के साथ में प्रणाम करेंगे, आचमन करेंगे, केशवाय नमः माधवाय नमः, जल प्राशन करेंगे और अपने हृदय की जितनी प्रार्थना है आप सब अर्पण कीजिए। फिर उसके बाद में पेड़ों को गले मिलना भूलना नहीं, बड़े प्रेम से सब पेड़ों को वृक्षों को आलिंगन देना, उनसे भक्ति और प्रेम की भिक्षा मांगना, इनके पास वो शक्ति है जो आपको वो दे सकते हैं। बोलो पीली पोखर धाम की, ये बरसाना धाम की, युवती राधा रानी की, गौरांग महाप्रभु की, गौरांग 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 श्रील प्रभुपाद की। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के ही परम कृपा से हम इस दिव्य स्थान पर आ सकते हैं, प्रभुपाद जी ने हमको इस ब्रज धाम का परिचय करा दिया है, इसलिए हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, सेवा पा रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। इसलिए आप श्री प्रभुपाद जी को भी मन में धन्यवाद दीजिए, अनंत धन्यवाद दीजिए, अपने गुरु महाराज को धन्यवाद दीजिए, इनकी असीम कृपा से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस दिव्य धाम का आनंद ले रहे हैं। और सब लोग जब हम लोग वहां पर जाएंगे, आप सब लोग बड़े प्रेम से आचमन कर लेना, जब सबका आचमन हो जाएगा तो हम लोग उसी की सीढ़ी में बैठकर बहुत सुंदर मधुर कीर्तन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हरि बोल।